नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। लिविंग वैल्यूज की इस श्रृंखला में आज एक बार फिर हम एक नए मूल्य की बात करेंगे, उसे जीतने की कोशिश करेंगे और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। आज हम बात करेंगे दृढ़ता की, यानी कि डिटर्मिनेशन की। इतने सारे मूल्यों को हमने आंका है, हमने उन वैल्यूज को जानने की कोशिश की है कि क्यों जरूरी है हमारे समाज के लिए, हमारे जीवन के लिए। लेकिन अगर हमारे पास डिटर्मिनेशन या दृढ़ता नहीं होगी तो हम इन मूल्यों को जीवन में कैसे शामिल करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए खास माउंट आबू से हमारे साथ वो मेहमान हैं जिन्होंने हमें किस तरह से अपनी जिंदगी में इन मूल्यों को उतारें उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम स्वागत करते हैं ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शीलू बहन, इतने दिनों से मैं आपसे इतनी सारी वैल्यूज की बात कर रही हूं। हमने शांति की बात की है, हमने ह्यूमिलिटी की बात की, हमने प्रेम की बात की, हमने और कई सारे मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। मैं अपनी बात करूं, मैं जब तक आपके पास हर रोज बात कर रही होती हूं मैं पूरे डिटर्मिंड होती हूं कि हाँ, मैं ये सब कुछ अपने जीवन में अब उतार सकती हूं, क्योंकि मुझे मेरा माइंडसेट चेंज हो गया है, मेरे को राह मिल गई है। लेकिन जैसे ही मैं समाज में पहुंचती हूं, बाहर जाती हूं, अपने वर्क प्लेस पर जाती हूं, घर पहुंचती हूं, सोसाइटी में जाती हूं, सब काफुर हो जाता है। मतलब कोशिश मेरे दिमाग में रहती है लेकिन कहीं एक कदम आया, मुझे मैं गलत कर बैठती हूं, उन मूल्यों को छोड़ देती हूं और फिर मुझे लगता है कि ओहो ये क्या हुआ। तो वो डिटर्मिनेशन, वो दृढ़ता कहां से आएगी कि हम जिन मूल्यों की बात कर रहे हैं उन पर खड़े रह सके।
वो डिटर्मिनेशन आएगी अपने अंदर में देखने से, अपने अंदर में झांकने से। क्या है, हम बहुत बाह्यमुखी हो चुके हैं और बाह्यमुखी होने के कारण बाहर की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार एक ऑब्जर्वर होता है, एक साक्षी दृष्टा होता है, वो देखता है कि सामने से कुछ भी हो रहा है परंतु उसका असर उस पर नहीं होता, वो अनअफेक्टेड होता है। इसी प्रकार हम भी इस संसार को देख रहे हैं, हर एक का पाठ देख रहे हैं, लेकिन हम उसके प्रभाव में न आए, इसमें डिटर्मिनेशन चाहिए। इसको कहते डिटर्मिनेशन, मुझे उससे प्रभावित नहीं होना है। जैसे कोई फिल्म देखता हो तो कोई बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, इमोशनल फिल्म होती है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है। तो जैसे बच्चा पूछ लेगा, मम्मी ऐसे ही क्यों हो रहा है, मम्मी ऐसे ही क्या कर रहा है, तो मम्मी कहेगी बेटा देखो, पूछो नहीं, देखो। सो जस्ट वेट एंड वॉच, वॉच एंड सी। अभी मम्मी को नहीं पता ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है।
क्या इमोशनल होना गलत है? जैसे मैं, आपने बिल्कुल बात कही कि मैं भी अच्छा देखते देखते रोने लग जाती हूँ, लेकिन क्या ये गलत है? क्या ये ओवर सेंसिटिविटी या सेंसिटिव हो जाना, क्या उसके साथ रिलेट कर जाना, ये हमें ही वीक करता है?
हाँ, इमोशनल होना एक हद से अच्छी बात है, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। हमारे अंदर इमोशंस है क्योंकि आत्मा के अंदर ही वो इमोशंस है। लेकिन किस समय कौन सा इमोशन व्यक्त करना, किस समय कौन सा, इसमें हमें समझ चाहिए। अब मानो हमें कोई हंसने की आवश्यकता नहीं और हम जोर जोर से हंस रहे हैं, जिस समय कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हम बोल रहे हैं, जिस समय चुप रहना चाहिए हम चुप नहीं रह पाते हैं, और जहां बोलना है वहां हम चुप हो जाते हैं क्योंकि नाराज हो गए तो बस मैं मुझे नहीं बोलना है। तो ये है इमोशनल इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस जहां आया इमोशंस का, वहां हम किस समय क्या करना है वो हमें कुछ समझ में नहीं आता।
बिल्कुल।
तो इसीलिए इमोशंस को अपने कंट्रोल में भी रखना है और कौन सा इमोशन किस समय प्रकट करना है उसके लिए हम साक्षी दृष्टा का भी अनुभव कर सकते हैं।
एक बात दृढ़ता की, आज हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन की, उसमें और जिद में या रिजिडिटी में एक थिन लाइन आ जाती है आज के इस दौर में। आपके सामने तो बहुत क्लियर होगा लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें, मेरी भी बात करें, तो मुझे लगता है कि मैं दृढ़ हूं कि मैं इसको ऐसा ही करूंगी, लेकिन हो सकता है कि वो कहीं जिद हो रही हो, कहीं मैं फ्लेक्सीबल नहीं हूं। तो डिटर्मिनेशन और रिजिडिटी या दृढ़ता और जिद, इसको कैसे अंडरस्टैंड करें और कैसे इस थिन लाइन को पहचान के जिद को हटाएं और दृढ़ता को शामिल करें?
दृढ़ता एक बहुत बड़ा वैल्यू है और स्टबननेस या रिजिडिटी एक अवगुण है, एक नेगेटिविटी है। तो जहां पर नेगेटिव वैल्यूज की बात है उसमें हमें डिटर्मिन होना है कि ये रिजिड वैल्यूज या ये जो नेगेटिव वैल्यूज है इनको मुझे धारण नहीं करना है, उसमें हमें डिटर्मिन होना है। परंतु जहां पर डिटर्मिनेशन की बात है जिसमें पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिविटी में मुझे डिटर्मिन्ड होना है, इन द सेंस कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं लेकिन मेरी शांति किसी भी हालत में भंग नहीं हो सकती है, ये है मेरी डिटर्मिनेशन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुस्से वाला है मान लो, और वो समझता है कि मुझे तो गुस्सा करना ही पड़ता है, गुस्सा तो करना ही चाहिए, और हर वक्त उसे गुस्सा आ ही जाता है, जब देखो गुस्सा ही कर रहा है, लेकिन और उसे समझाओ भाई गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्यों अपने तन को बिगाड़ रहे हो, क्यों अपने रिलेशनशिप्स को बिगाड़ रहे हो, कहता है मैं नहीं बदल सकता, मैं बदल ही नहीं
सकता। मैं तो ऐसा ही हूँ, आई एम लाइक दिस, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, तो ऐसे में क्या किया जाए,
यही मेरे संस्कार है, मैं नहीं बदल सकता। अब मैं नहीं बदल सकता ये रिजिडिटी है, ये स्टबननेस है। परंतु ये क्यों स्टबननेस आती है, क्योंकि हम समझते यही मेरा संस्कार है। लेकिन हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो हम कहते हैं वास्तव में ये आपका अनादि आदि संस्कार नहीं है, हर आत्मा का अनादि और आदि संस्कार बड़ा ही शुद्ध है। जैसे एक सच्चा सोना होता है, वो सच्चा सोना माना 24 कैरेट गोल्ड, उसमें खाद मिलाई जाती है, फिर वो खाद निकाली भी जा सकती है, तो असली स्वरूप में तो वो शुद्ध सोना है। तो इसी प्रकार हम आत्माएं भी अपने असली स्वरूप में तो बहुत ही शुद्ध हैं।
लेकिन संस्कार आपने कहा कि उनका संस्कार माने क्या, संस्कार का क्या
नहीं, संस्कार माना कई जन्मों के कर्म,
प्रारब्ध,
हाँ प्रारब्ध जिसको कहते हैं, तो वो जो कई जन्मों के कर्मों की जो प्रारब्ध रूप में हम अभी अनुभव करें वो संस्कार बन गए। जैसे हम कोई कर्म बार बार करते वो संस्कार कहलाता है, वो एक हैबिट बन जाता है, और कई बार हम आदत से मजबूर हो जाते हैं, न चाहते हुए भी वो हम कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं हम क्या करें, आई कांट चेंज, और कई बार स्टबन हो जाते ये सोच करके यही तो ठीक, यही ठीक है मेरे लिए।
अच्छा, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जिद हमने पकड़ ली, हम जिसको हम डिटर्मिनेशन माने कि आई एम डिटर्मिन्ड आई विल डू लाइक दिस, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं गलत हूं, उसके बावजूद भी क्योंकि मैं कह चुकी हूं तो मैं उसे पीछे नहीं हटूंगी, वो तो और भी शायद खराब स्टेज आ जाती है, उसको हैंडल कैसे करें, अपने एक्सेप्ट करना कि मैं गलत थी, ये एक्सेप्टेंस कैसे आ सकती है,
यानी जिसके लिए अभी ह्यूमिलिटी की बात हमने एक मीटिंग में की, तो उसके लिए फिर हम्बल बनना पड़े, उसके लिए हमें क्षमा भी मांगनी पड़े। अगर क्षमा भी हम मांग लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर मेरे अंदर ईगो है तो मैं कहूंगी मैं क्यों क्षमा मांगू, परंतु अगर मैं हम्बल हूं तो मैं खुद ही क्षमा जा करके मांगूंगी कि भी हाँ ये मेरी गलती हो गई। कई बार गलती होती है लेकिन हम क्षमा नहीं मांगते हैं, हम नहीं बताते हैं, तो हमारी स्ट्रेस बढ़ जाती है, हम अपनी स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं और अपने शरीर पर ही उसका दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये समझदारी होगी कि वो बात को हल्का करने लिए एक बार सॉरी कह दिया और क्षमा मांग करके फिर अपने आप को बदल देना चाहिए। तो डिटर्मिनेशन का मतलब है कि अपने अंदर ऐसी दृढ़ता लाना कि मुझे जरूर बदलना है, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। कोई मुझे बार बार कहता है और मैं उस जिद पर आ जाऊं कि नहीं मैं तो नहीं बदल सकता, ये मेरी कमजोरी, क्यों नहीं बदल सकता हूं, आज हर चीज बदल सकती है, हर दुनिया तो है ही परिवर्तनशील, इस संसार में सब कुछ परिवर्तित होता है, तो मैं क्यों नहीं बदल सकता।
और अपनी नेगेटिविटी को बदलना की डिटर्मिनेशन जो है
जरूर, लेकिन क्या उसके लिए लक्ष्य चाहिए। अब लक्ष्य ही नहीं है, जैसे एक बच्चे के अंदर लक्ष्य ही नहीं है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, मुझे अच्छा पढ़ना है, मुझे अच्छा स्टैंडर्ड लाना है अपना, या जो कुछ भी अगर एक दृढ़ता हो तो वो अपना समय श्वास शक्ति बर्बाद नहीं करेगा, पर लक्ष्य ही नहीं है,
बिल्कुल,
तो उस प्रकार लक्षण भी नहीं आते। कोई भी कार्य करने के पहले हमें उसके लिए लक्ष्य चाहिए, हमें करना क्या है, और फिर उस लक्ष्य के मुताबिक हमें वो लक्षण आएंगे। अब मुझे फर्स्ट आना है, ये मेरा अंदर डिटर्मिनेशन है, तो फर्स्ट आना है तो उस डिटर्मिनेशन के अंदर मैं पढ़ाई करूंगा। लेकिन अगर मैं कहती मैं तो कभी फर्स्ट आ ही नहीं सकती, मैं तो कभी मार्क्स ले ही नहीं सकती, मैं तो ये नहीं कर सकती, तो वो जो नेगेटिव थिंकिंग मेरे अंदर आ जाती है ना, इसी के आधार पर मैं वो डिटर्मिनेशन लाई नहीं।
बिल्कुल, और वो कहीं एनर्जी लेवल ही लो होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल,
फिर हम उसमें क्या एक विजन क्रिएट करते हैं कि देखो मैं हर वक्त फेल ही हुई हूँ, मैं तो कभी पास हुई ही नहीं हूँ, तो वो डिटर्मिनेशन कहाँ से आएगा। तो डिटर्मिनेशन पहले अंदर से आना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ दैट स्ट्रांग थॉट कि मुझे पास होना ही है, मुझे फर्स्ट आना ही है। ये जो अंदर से दृढ़ता आ जाएगी ना, उससे शक्ति भी आ जाएगी
और वो कन्वर्ट हो जाएगी फिर पॉजिटिव एनर्जी में और सही रास्ते पे आप काम करने लग जाएंगे। बहुत सुंदर आपने बात कही शीरू बहन की, डिटर्मिनेशन को अपने अंदर से ही जागृत करना है और एक लक्ष्य साध कर। लेकिन डीप विद इन अगर हम डिटर्मिनेशन या दृढ़ता को एक वैल्यू के रूप में देखें तो क्या है वो, क्या
इट इज लाइक self confidence. Determination is like self confidence. I have confidence in myself. कई इसके ऊपर कहानियां सुनाते हैं। एक कहानी बताते हैं कि एक राजा था, उसने अपने राज्य में ऐलान किया, उसके पास एक बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर के लिए ऐलान किया कि जो इस पत्थर को एक धक से तोड़ेगा मैं उसको अपना आधा राज्य दूंगा, एक ऐलान किया। अब कई आए, कई लोग आए, बड़े बड़े धुरंधर लोग, बड़े मसल मैन, और सोचा कि एक धक से हम तोड़ेंगे, लेकिन कोई नहीं तोड़ सका। आखिर एक दुबला पतला सा व्यक्ति आया, बहुत दुबला पतला सा, ऐसे लगता था जैसे इसने तो जान ही नहीं है। तो राजा ने सोचा ये क्या तोड़ेगा, लेकिन उसने कहा कि मेरी भी एक शर्त है, वो शर्त आपको मंजूर हो तो मैं अवश्य तोड़ूंगा। तो उसने कहा अच्छा आपकी शर्त क्या है, राजा ने पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा मेरी शर्त है कि एक व्यक्ति मेरे कान में कुछ कहेगा, वो केवल कहने का काम करेगा, तोड़ूंगा मैं, अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो मैं तैयार हूं। तो राजा ने कहा मुझे ये शर्त मंजूर है, मेरी तो इतनी शर्त है कि एक धक से कोई तोड़े। तो सच में जैसे वो व्यक्ति सामने आया उस पत्थर के, हथौड़ा हाथ में उठाया तो दूसरे व्यक्ति ने उसके कान में कुछ कहा, और जैसे वो कहता गया कहता गया कहता गया, इसके अंदर हिम्मत आ गई, शक्ति आ गई, और उस एक धक से उसने तोड़ दिया। तो जब उसने एक धक से तोड़ दिया तो राजा को आश्चर्य हुआ, ये कैसे तोड़ सका, ये तो कितना कमजोर व्यक्ति और तोड़ दिया। तो राजा ने उससे पूछा कि इसने आपको कान में क्या कहा, ऐसा कोई मंत्र कहा, क्योंकि वो मंत्र में शक्ति है ऐसे हम सुनते आए हैं, तो कौन सा मंत्र कहा जितनी शक्ति आपको आ गई। तो उस व्यक्ति ने कहा देखो मैं राजपूत हूं, और ये व्यक्ति मुझे कान में कह रहा था याद रखो तुम राजपूत हो, राजपूत कभी हार नहीं खा सकता है, राजपूत सदाई विजयी रहता है, तुम्हारे पिता ने कभी हार नहीं खाई, तुम्हारे दादा ने कभी हार नहीं खाई, तुम्हारे परदादा ने कभी हार नहीं खाई, तुम जीतने वाले हो, तुम जीतने वाले हो, तुम हार नहीं खा सकते। बस वही मुझे कान में कहता गया कहता गया कहता गया, तो मुझे इतनी शक्ति आ गई जो मैंने
बहुत
एक धक से तोड़ दिया। तो यही मुझे कहा, यही मंत्र है। हम लोग भी यही कहते हैं मंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र नाम, मंत्र माना मंत्रणा, मन को बुद्धि के द्वारा एक संकल्प देना, एक दृढ़ता का संकल्प देना, और वो संकल्प देने से अंतर से शक्ति आ जाती है। तो जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, आत्मविश्वास की बात करते हैं, वो शक्ति भी भीतर से आती है।
बिल्कुल, और बात वही आ जाती है श्री बहन, कहा भी गया है कि सपना तब सच्चा होता है जब संकल्प पक्का होता है। तो अगर हमने कुछ सपने भी देखे हैं तो उसके लिए भी हम संकल्प करते हैं। अगर आज हम उन मूल्यों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, दृढ़ता की, जैसे आपने बात की, हम मूल में गए कि दृढ़ता या डिटर्मिनेशन जो है उसका मूल क्या है, मतलब किस कैसे हम समझें कि कैसे उस डिटर्मिनेशन को अपनी जिंदगी में उतारना है, तो सभी मूल्यों पर खरा उतरने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए वो दृढ़ता बहुत जरूरी नजर आती है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं होता है कि सारे जितने सारी अट्रैक्शंस हैं या जितना सब कुछ हमारे आसपास हो रहा है उससे बच के हम डिटर्मिन या संकल्प लेके अपने आप को डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते जाएं, उसको कॉम्बैट कैसे?
तो जैसे देखिए पहले जमाने में योद्धा होते थे ना, तो युद्ध करने के लिए उनके हाथ में एक तलवार होती थी और फिर डिफेंस के लिए एक ढाल होती थी और एक आर्मर पहनते थे, वो भी डिफेंस के लिए होता था,
कवच,
तो जिसको कवच कहते। तो हाथ में तलवार जिससे अटैक करते थे और दूसरे हाथ में ढाल और कवच पहनकर वे युद्ध के मैदान में जाते थे। तो सामने से कोई दुश्मन वार करता था, अब वो देखता था इसमें हमें डिफेंसिव होना है या अटैक करना है। जब बहुत नजदीक आ जाता था तो डिफेंस ही सबसे अच्छा माध्यम था, जहां थोड़ा सा दूर है तो अटैक करना होता है। तो इसी प्रकार डिटर्मिनेशन माना एक अंदर में एक परख शक्ति और निर्णय शक्ति, आदि मध्य अंत सोच करके, जिसमें हम ये देखते हैं कि वैल्यूज को हम महत्व दे रहे हैं तो कुछ भी हो जाए मुझे पीछे हटना नहीं है, परंतु हम जो कुछ भी करें अपने वैल्यूज की कीमत पर नहीं। तो डिटर्मिनेशन माना अपने वैल्यूज को महत्व देते हुए मुझे वो कार्य करना है। जैसे जहां मेरे चरित्र की बात आती है, मुझे कुछ भी करना पड़े, मरना पड़े, लेकिन मैं अपने चरित्र को नहीं दूंगी, ये डिटर्मिनेशन है। और जहां पर बताए कोई व्यक्ति है, चलो लेट गो, छोड़ दो, सहजता है, तो वहां पर हमें जिद नहीं करना है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो डिटर्मिनेशन इज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, उसमें हमें लक्ष्य सामने रखना है कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना ही है, अब मुझे ये सीढ़ी चढ़नी है ऊपर तक पहुंचना है, और पहले ही मैं कह दूं मैं तो नहीं कर सकती, मेरी टांगे तो नहीं चलती है, मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगी, तो शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये संकल्प करती हूँ नहीं मैं जरूर कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ, अवश्य हो जाएगा, देखो कैसे करती हो, शक्ति भी आ जाएगी। हम गीता में मिसाल देते, अर्जुन कहे मैं तो नहीं लड़ूंगा, ये मेरे मामा चाचा काका मैं कैसे मारूं, मैं ये कैसे करूं, ये इनको ये तो बड़ा पाप हो जाएगा। अब भगवान उसको कह रहे हैं लड़ो, आगे बढ़ो, तीर कमान चलाओ, मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन जब भगवान ने उसको वो आध्यात्मिक ज्ञान दिया कि तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को, तुम क्षत्रिय हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, विजय तुम्हारे सामने निश्चित है, ये सब मरे पड़े हैं, तुम्हें ये भगवान कह रहा है, तो जब उसे ये समझ आई तब डिटर्मिनेशन आया, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ अब मेरा ये मोह नष्ट हुआ है, अब मुझे स्मृति आई है, अब मैं करने लिए तैयार हूँ। तो उसमें डिटर्मिनेशन तब तक नहीं आई जब तक वो अपने आप को समझ ही नहीं पाया कि वो है कौन,
आत्मज्ञान की जो बात,
न आत्मज्ञान था न परमात्म ज्ञान था, वो तो मोह में फंसा हुआ था, न अपने कर्तव्य को समझ पा रहा था, न उसके आगे भविष्य स्पष्ट था, बिल्कुल ऐसे असमंजस में था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब उसको वो समझ भगवान ने दी तब उसके अंदर में दृढ़ता आई और उस दृढ़ता के आधार पर उसने तीर कमान चलाया।
बहुत सुंदर आपने बात कही बहन की, जब डिटर्मिनेशन थी, दृढ़ता थी, तो सही मूल्यों पर चल के अपने कर्तव्य को समझ के अर्जुन भी युद्ध कर पाए और महाभारत का एक जीत जो हुई। लेकिन आज के इस दौर में अगर हम देखते हैं तो मुझ में अगर डिटर्मिनेशन है कि मैं ये गलत रास्ते पर नहीं चलूंगी और अपने मूल्यों पर ही खड़ी रहूंगी, लेकिन पीयर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, मेरे साथ के लोग हैं या जितने भी लोग, अरे तुम स्मोक नहीं करते हो, अरे तुम ड्रिंक, लड़कों की बात भी करते हो कि स्मोक नहीं कर रहे हो, तुम ड्रिंक नहीं कर रहे हो, तुम पार्टी में कैसे आओगे, तो वो तब ऐसे में वो डिटर्मिनेशन कैसे कायम रह सकते, जब चारों तरफ का प्रेशर है, उसमें ऐसे लगने लगता है कि आप एक अलग हैं, आप कहीं सोसाइटी से अलग हो गए हैं, जब सब लोग वही काम कर रहे हैं, उस पीयर प्रेशर से अपने आप को कैसे बचाएं?
बस यही हमें समझना है, जहां नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो मुझ पर बहुत जल्दी आ जाता है, मैं जल्दी प्रभावित हो जाता हूँ उस नेगेटिविटी से। तो अगर किसी की नेगेटिविटी मुझ पर इतना प्रभाव डाल सकती है तो मेरी पॉजिटिविटी दूसरे पर मेरा प्रभाव क्यों नहीं डाल सकती है? नेगेटिव का प्रभाव क्या ज्यादा पावरफुल है या पॉजिटिव का प्रभाव ज्यादा पावरफुल है?
लेकिन नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा आसान तो है। ये बात तो है कि हम आसानी से नेगेटिविटी में बह जाते हैं, मतलब बहुत उसमें अगेन दृढ़ता शायद ज्यादा मायने रखती है कि मैं कितनी दृढ़ हूं। लेकिन ये तो देखा गया है शेरू बहन कि जो भी नेगेटिव होता है सोसाइटी में वो बहुत आसान हो जाता है, बहुत अच्छा भी लगने लगता है, आकर्षक लगता है।
ये तो सही है, क्योंकि जैसे ना गिरना बहुत आसान है, कोई भी बुरी आदत अपनाना बहुत सहज है अपनाना, लेकिन वो बुरी आदत को छोड़ना उसमें मेहनत है। जैसे गिरना आसान है, चढ़ना तो मुश्किल है।
हाँफ जाएंगे,
हाँ, सांस भी भारी होता है, हाँफ जाते हैं, और उतरना तो बड़ा सहज है। तो इस संसार में अपनी वैल्यूज को एक सेकंड में हम खत्म कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उनसे हम किनारा कर सकते हैं, लेकिन फिर वो वैल्यू सिस्टम तक पहुंचना उसमें मेहनत है। तो ये डिटर्मिनेशन फिर उसी में मदद करती है कि मैं अपने वैल्यू सिस्टम को, मुझे बचाना है, मुझे उस तक पहुंचना है। जैसे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, अब उसको लक्ष्य है कि मुझे फर्स्ट आना है, तो उसी मेहनत से पढ़ेगा, और अगर उसको 90% मार्क्स भी आएंगे ना, तो भी कहेगा क्यों मेरे 10% कहाँ गए, मुझे तो 100 out of 100 मिलने चाहिए थे, मेरे 10% कहाँ चले गए वो मार्क पे, वो शीट शायद वो आंसर पेपर भी खुलवाएगा। कई ऐसे खुलवाते हैं ताकि ये भूल मेरी नहीं, एग्जामिनर की है, मुझे तो 100 out of 100 मिलना चाहिए था, क्योंकि वो डिटर्मिन था 100 out of 100 लेने का। लेकिन कोई डल स्टूडेंट है, मान लीजिए हमेशा फेल ही होता रहता, कभी उसने डिटर्मिनेशन रखी नहीं, तो अगर उसे 40% भी मिला तो भी खुश हो जाएगा, वाह ठीक है पास हो गया, हमेशा ही फेल होता हूँ, क्योंकि वो जीरो से अपनी मार्क्स गिनता है।
बिल्कुल,
यहाँ होशियार है वो 100 से गिनता है।
बहुत सुंदर आपने बात कही कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, वो फर्क हो जाता है, वो इंडिविजुअल्स में फर्क आ जाता है, और वही बताता है कि कौन डिटर्मिंड है और कौन नहीं है डिटर्मिंड। लेकिन ये आज देखिए हम जिस समाज में हैं उसमें प्रॉस एंड कॉन्स बहुत सोचते हैं, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आज हमें जानना, हमारे पूरे जितने भी दर्शक भी देख रहे हैं, पूरे समाज को, सोसाइटी को ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम इन मूल्यों को अपने जीवन में शामिल नहीं करेंगे, अगर हम यही अपने अमूल्य जीवन जिसे हम कहते हैं उसको बिना मूल्यों के ही चलाते रहेंगे, डिटर्मिनेशन या दृढ़ता का हमारे जीवन में होना कितना जरूरी है, नहीं तो हम किस रास्ते पर चलेंगे।
जरूर, ये हमें अंदर में निश्चय करना होगा कि अगर जीवन में वैल्यूज नहीं है तो ये जीवन वैल्यूलेस है, ये समझ लो। आज जिन लोगों में वैल्यूज नहीं है, आप देखिए उनका हाल क्या होता है, नतीजा क्या निकलता है, वो कहाँ अधोगति को प्राप्त करते हैं, रसातल में चले जाते हैं, उनका नामो निशान नहीं है। लेकिन जिन्होंने वैल्यूज को अपने जीवन में अपनाया, आज वो अमर हो गए हैं। तो वो अमर किस आधार पर हुए? उनके वैल्यूज के आधार पर अमर हुए। और जिन्होंने नहीं थे वैल्यूज, उनको तो मनुष्य सब भूल गए हैं। तो मुझे मेरा जीवन कैसे व्यतीत करना है ताकि मैं जब इस संसार से जाऊं तो कम से कम मैं इतना तो संतुष्ट होकर के जाऊं कि मैंने समाज के लिए कुछ किया, मैंने अपनी आत्मा के लिए कुछ किया, मैंने ईश्वर के लिए कुछ किया। नहीं तो कहीं मुझे रोना न पड़े, कहीं ऐसा न हो कि धर्मराज की सजाएं मुझे खानी पड़े, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो अगर हम दृढ़ हैं तो शक्ति भी तो ईश्वर ही देता है। देखो कहते हैं हिम्मत मर्दा मददे खुदा, तुम एक कदम भगवान के नजदीक आओ तो वो 100 कदम तुम्हारे करीब आएगा। अब कई लोग इतने हिम्मतहीन होते हैं, जरा भी उनमें वो डिटर्मिनेशन वो नहीं है तो क्या कहेंगे, हे भगवान हिम्मत भी तुम्हें दो, मदद तो करो ही, मदद तो मांगते ही हैं, लेकिन हिम्मत भी ईश्वर से ही मांगते हैं। भगवान कहते हैं हिम्मत तो खुद रखो।
बिल्कुल, और जैसे ये भी कहते हैं कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो पहले खुद अपनी मदद तो करना चाहते हैं।
गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, लेकिन हम पहला कदम उठाते ही नहीं है हिम्मत का, तो भगवान की मदद कैसे मिलेगी।
बहुत सुंदर।
एक माँ भी देखिए बच्चे को कहेगी बेटा चलो, अभी चलना सिखा रही है, पर बच्चा हिम्मत ही नहीं रखता है पहला कदम उठाने का भी, तो माँ उसको कैसे चलाना सिखाएगी।
लेकिन वो हिम्मत हमें आपसे मिलती है, वो ताकत हमें आपसे मिलती है, मतलब एनलाइटन्ड पीपल जो कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि जिंदगी में सुधार लाया जा सकता है। तो शीलू बहन, मेडिटेशनल आस्पेक्ट की तरफ अगर चलें कि किस तरह मेडिटेशन से अपने जो मन है उसे दृढ़ किया जा सकता है और इस जो हम डिटर्मिनेशन की बात है उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं।
जरूर जरूर, तो हम अवश्य ये सबको बताना चाहेंगे कि कैसे अपने जीवन में दृढ़ता अपनानी है। दृढ़ता कहो या दृढ़ संकल्प कहो, जो बुद्धि के द्वारा मन को देना है, क्योंकि बुद्धि अंतरात्मा की आवाज है जो हमें सही निर्णय देती है। अंतः आत्मा अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रेरणा देती है, परंतु उसके लिए दृढ़ संकल्प करना ये मेडिटेशन का एक अंग है। तो चलिए हम उसका अनुभव करें। जब भी कोई ऐसा असमंजस आ जाए, ये समझ में न आए कि मुझे क्या करना है, उस समय सब बातों को छोड़कर कछुए के समान अपने इंद्रियों को निग्रह कर ले, इस देह से न्यारे हो जाएं, आत्मस्थिति का चिंतन करें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप हूं और सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूं, तो लक्षण भी अवश्य मेरे भीतर आएंगे। तो मैं दृढ़ संकल्प करती हूं कि मैं आत्मा अवश्य उस ऊंच शिखर पर पहुंचूंगी जो मेरी जीवन की चाह है, क्योंकि जहां चाह है वहां राह भी जरूर है। हिम्मत है तो परमात्मा की मदद भी जरूर है।
शीलू बहन, बहुत अच्छा लगा कि आज आपने हमें बताया कि दृढ़ता यानी कि जो डिटर्मिनेशन है वो कितनी जरूरी है और कितनी बड़ी शक्ति के रूप में सामने आ सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन आपको बता दें कि ये जो पूरी श्रृंखला है ये आपकी अपनी श्रृंखला है, इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है जो कि मूल्यों से जुड़ा है या फिर कोई और बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फोन पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com और हमारा फोन नंबर है 9873666655। इसी के साथ अब हमें दीजिए विदा, लेकिन आपको बता दें कि अगली कड़ी में हम एक और महत्वपूर्ण वैल्यू और महत्वपूर्ण मूल्य पर बात करेंगे और वो है रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान। तो फिर आप रहिएगा हमारे साथ लिविंग वैल्यूज में। नमस्कार।
ओम शांति ओम।